एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथ सार में आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो जो दिल को छू लेती है और हाँ, सोचने पर भी मजबूर करती है। हम बात कर रहे हैं ब्रेट लॉट के काफी चर्चित उपन्यास ज्वेल की।
हाँ, ब्रेट लॉट अमेरिकी दक्षिणी साहित्य का एक बड़ा नाम है वो।
बिल्कुल, और उनकी खासियत यही है कि वो आम इंसानों की जिंदगी में, मतलब बहुत साधारण सी जिंदगी में, कुछ असाधारण सा ढूंढ लेते हैं
और रिश्तों को बड़ी ईमानदारी से दिखाते हैं, कोई लाग लपेट नहीं।
हाँ, उनकी भाषा भी देखिए कितनी सरल है, लेकिन उसमें एहसास संवेदनाएं बहुत गहरी होती हैं। ज्वेल ये किताब आई 1991 में और ये ब्रेट लॉट के लिए एक एक मील का पत्थर जैसी थी।
हाँ, पर असली शोहरत तो मिली जब 1999 में ओपरा बुक क्लब में इसे चुना गया।
ओ हाँ, तब तो ये जैसे कल्चरल फिनोमिनन बन गई थी, है ना?
बिल्कुल, एकदम से सबकी नजर में आ गई।
इस पर टीवी फिल्म भी बनी है।
हाँ, मैंने सुना है। अच्छा, तो ये कहानी हमें ले जाती है 1940s-50s के अमेरिका में,
जी,
अमेरिकी साउथ, खासकर मिसिसिपी।
मिसिसिपी। तो ये उस दौर की जो पारिवारिक कहानियां होती थी उसी कड़ी का हिस्सा है।
हाँ, एक पूरी परंपरा है वहां ऐसी कहानियों की।
तो आज हम इसी उपन्यास की कहानी, किरदारों का सफर और इसके जो मुख्य विषय हैं, जो गहरे संदेश हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे
और ये सवाल भी कि बिना शर्त प्यार की हद क्या होती है।
और उसकी कीमत,
हाँ
क्या कीमत चुकानी पड़ती है।
बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1943 में। जगह है मिसिसिपी का एक छोटा सा शहर, चौकटॉ।
चौकटॉ
जी।
हम मिलते हैं जूल हिलबर्न और उसके पति लेस्टन से।
एक बहुत ही कह सकते हैं आम सा मेहनती परिवार।
पहले से उनके 5 बच्चे हैं।
जिंदगी बहुत सीधी सादी है। जमीन से जुड़े लोग, लेम्स्टन पास की पेपर मिल में काम करता है और बस एक बड़े परिवार को पालने की जो रोज की खुशियां और मुश्किलें होती हैं।
हाँ, जो आम जिंदगी होती है।
बिल्कुल, वही सब चल रहा है। और फिर उनके घर छठे बच्चे का जन्म होता है, ब्रिंडा के।
ब्रिंडा के।
लेकिन जन्म के ठीक बाद डॉक्टर कुछ ऐसा कहता है जो बहुत कठोर है, लगभग बेरहम।
क्या कहता है डॉक्टर?
वो बच्चे को उस जमाने के एक बहुत ही अपमानजनक शब्द से बुलाता है, मंगोलॉइड इडियट।
ओह,
ये डाउन सिंड्रोम के लिए इस्तेमाल होता था तब। और डॉक्टर की सलाह वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है।
क्या सलाह देता है?
कहता है इसे किसी संस्था में डाल दो और भूल जाओ।
भूल जाओ अपनी बच्ची को।
हाँ, और वो ये भी कहता है कि ये बच्ची कभी चल बोल नहीं पाएगी, इसकी कोई मतलब की जिंदगी नहीं होगी।
ये तो दल तोड़ने वाली बात है किसी भी माँ के लिए।
और यहीं पर मुझे लगता है कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है ना।
एक तरफ डॉक्टर का वो ठंडा वैज्ञानिक सा लगने वाला फैसला और दूसरी तरफ एक माँ का दिल, उसका अंदर का एहसास।
उसका ममत्व।
हाँ, और ये उस वक्त के समाज को भी दिखाता है, मतलब विकलांगता को कैसे देखा जाता था, अक्सर एक शर्मिंदगी, एक बोझ,
हाँ, छुपाने वाली बात मानी जाती थी।
और बच्चों को दुनिया से दूर कर दिया जाता था। तो ये सवाल खड़ा होता है कि भाई किसी इंसान की जिंदगी का मोल क्या है? क्या वो सिर्फ इस बात से तय होता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं?
सही कहा। लेकिन ज्वेल ज्वेल का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है।
क्या करती है वो?
वो डॉक्टर की बात को सुनती है लेकिन उसे एक एक फैसले की तरह नहीं लेती, उसे एक चुनौती मान लेती है।
चुनौती।
हाँ, जैसे उसके अंदर कोई स्विच ऑन हो गया हो, एक खामोश लेकिन इतना पक्का इरादा कि वो दुनिया को गलत साबित करेगी। वो तय कर लेती है ब्रिंडा के घर पर ही रहेगी, उसे वही प्यार, वही इज्जत, वही मौके मिलेंगे जो किसी भी बच्चे को मिलने चाहिए।
वाह।
जैसे वो मन ही मन कह रही हो, ये मेरी बच्ची है, मैं इससे प्यार करती हूँ, बस।
ये हुई ना बात।
ये एक माँ का जैसे अपनी कोख से किया गया वादा था।
तो कहानी की बुनियाद यही बन जाती है फिर।
बिल्कुल।
एक माँ का अटूट प्यार, उसका फौलादी इरादा, और ये दास्तान 40 साल चलती है।
40 साल, एक लंबा सफर।
हाँ, वो अपनी बेटी को सिर्फ जिंदा नहीं रखती, बल्कि उसे एक एक भरपूर जिंदगी देने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है।
सही।
तो ये कहानी सिर्फ विकलांगता के बारे में नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस माँ के प्यार की ताकत के बारे में है जो किसी भी मुश्किल से टकरा सकती है।
और हाँ, ये भी कि उस ताकत के नतीजे क्या होते हैं, कभी कभी अनचाहे नतीजे भी।
हाँ, वो पहलू भी है इसमें।
चलिए अब किरदारों पर थोड़ी और बात करते हैं। जॉल हिलबर्न नाम ही काफी है ना?
नाम ही ज्वल यानी रत्न।
हाँ, वो कहानी का केंद्र है, दिल है कहानी का। उसके अंदर एक शांत सी ताकत है, पक्का इरादा, बेपनाह मोहब्बत और हाँ एक गहरी जिद भी।
जिद्दी तो है वो।
शुरू में वो लगती है जैसे उस जमाने की कोई भी आम पत्नी और माँ होगी, लेकिन ब्रेंडा के जन्म
उसे बदल देता है।
हाँ, उसके अंदर की वो योद्धा जैसे जाग जाती है जिसे शायद वो खुद भी नहीं जानती थी।
ये बहुत दिलचस्प है देखना कैसे हालात एक आम इंसान को खास बना देते हैं। वो एक घर संभालने वाली औरत से अपनी बेटी की किस्मत लिखने वाली बन जाती है। उसका ये सफर एक तरह से खुद को जानने का भी सफर है। वो दुनिया के पैमानों को मानने से इनकार कर देती है।
सही कहा। और उसकी ताकत का स्रोत क्या है?
ब्रेंडा के लिए उसका प्यार।
हाँ, वो प्यार बिल्कुल निश्चल है, कह सकते हैं आदिम, एकदम बुनियादी।
और कभी कभी तो वो जुनून जैसा लगता है।
लगता है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, और यही शायद उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी छिपी है।
कैसे मतलब ट्रेजेडी कैसे? क्योंकि इससे प्यार से उसे हिम्मत तो मिलती है, लेकिन वो अनजाने में अपने बाकी बच्चों से दूर होती जाती है।
हाँ, ये बात भी है।
सारा ध्यान सारी ऊर्जा ब्रेंडा के पर लग जाती है।
बाद में जुएल खुद भी इस बात को समझती है ना?
बिल्कुल।
एक जगह वो सोचती है, प्यार वो नहीं जो तुम महसूस करते हो, प्यार वो है जो तुम करते हो।
बिल्कुल। उसका प्यार उसके एक्शन में दिखता है हर पल।
अब बात करते हैं लेस्टन की, जुएल का पति।
लेस्टन हिलबर्न वो परिवार का कह सकते हैं लंगर है, शांत खंभा।
शांत खंभा सही शब्द है। ज्यादा बोलता नहीं पर मजबूती से खड़ा रहता है।
बहुत ईमानदार और मेहनत, हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला आदमी। उसके हाथों पर जिंदगी भर की मशक्कत की कहानी लिखी है जैसे।
जहां जुएल सपनों में जीती है, लड़ती है, वहीं लेस्टन जमीन से जुड़ा है, यथार्थवादी है वो।
हाँ बिल्कुल। जुएल अगर हवा है तो लेस्टन जमीन।
उसका अपना संघर्ष है, समाज क्या कहेगा, भविष्य का डर,
और खासकर कैलिफोर्निया जाने का वो फैसला, उसका बोझ वो महसूस करता है।
हाँ, वो जुएल के जोश को संतुलित करता है, उसे सहारा देता है, उसका वो खामोश बलिदान, वही तो कहानी की नींव है।
उपन्यास में एक जगह जिक्र है जब वो मिसिसिपी छोड़ रहे होते हैं, लेसन को लगता है जैसे वो अपनी पहचान, अपना वजूद, सब कुछ वहीं मिट्टी में छोड़ आया है।
ये उसके त्याग की गहराई दिखाता है, बहुत मार्मिक है ये।
बहुत।
और फिर
ब्रेंडा के।
हाँ, ब्रेंडा के हिलबर्न।
वो सिर्फ कहानी का कारण नहीं है, वो धीरे धीरे एक पूरे किरदार की तरह उभरती है।
अच्छा, कैसे?
उसमें जान है, उसमें खुशी है, लोगों से जुड़ने की एक अनोखी काबिलियत है। उसका सफर उम्मीदों से परे जाने वाला है।
तो वो सिर्फ एक बोझ या प्रतीक नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन सारी सीमाओं को तोड़ती है जो दुनिया या डॉक्टर ने उस पर लगाई थी। वो पढ़ना सीखती है, लिखना सीखती है।
सच में?
हाँ, उसकी अपनी एक दुनिया है, अपनी सोच है। वो इस उपन्यास के सबसे बड़े संदेश का जीता जागता सबूत बन जाती है।
और वो संदेश क्या है?
यही कि जिंदगी का मोल आपकी दिमागी या जिस्मानी काबिलियत से नहीं मापा जाता।
सही, जैसे जुएल कहती है, कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि मेरी बेटी क्या कर सकती है या क्या नहीं, जब तक उसे कोशिश करने का मौका ना मिले।
और ब्रेंडा के उस मौके को हाथ से जाने नहीं देती।
कमाल है। अच्छा, बाकी बच्चे भी तो हैं, 5 और बच्चे।
हाँ, बर्टन, विल्मन, एनी, बिली जीन और जेम्स। वो दिखाते हैं कि जुएल की इस भक्ति की एक अनचाही कीमत भी चुकानी पड़ी।
क्या कीमत?
उनका अनुभव है अपनी बहन की जरूरतों के साये में बड़े होने का। उन्हें लगता है माँ का ध्यान हमेशा ब्रेंडा के पर ही रहता है, वो कहीं पीछे छूट गए।
हाँ, ये कहानी को बहुत वास्तविक बना देता है, पेचीदा भी।
बिल्कुल। उन्हें लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, वो माँ का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीकों से,
और फिर एक एक करके वो घर छोड़कर चले जाते हैं।
हाँ, ये परिवार के अंदर के तनाव को, मुश्किल रिश्तों को दिखाता है। ये सवाल भी उठता है कि क्या एक मकसद के लिए इतना ज्यादा समर्पण, चाहे वो कितना भी नेक क्यों ना हो,
क्या वो बाकी रिश्तों की कीमत पर होना चाहिए?
हाँ, क्या जुएल का प्यार सिर्फ ब्रेंडा के लिए रिजर्व हो गया था? ये सवाल पाठक के मन में कहीं ना कहीं आता है।
चलिए, अब कहानी आगे कैसे बढ़ती है उस पर आते हैं। ये तो 40 साल का सफर है।
हाँ, लंबा सफर है। पहला हिस्सा मिसिसिपी में है, 1940 और 1950।
ठीक है।
ब्रेंडा के का जन्म होता है। डॉक्टर की सलाह को जुएल ठुकरा देती है। मिसिसिपी में जिंदगी आसान नहीं है, मौके कम है,
और समाज की सोच भी अलग थी।
बिल्कुल। परिवार को पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जुएल और ब्रेंडा के बीच एक बहुत गहरा अटूट रिश्ता बन जाता है।
और लेंस्टन?
लेंस्टन पेपर मिल में अपने सख्त मिजाज बॉस कैथीड्रल के नीचे काम करता रहता है, जूझता रहता है। इन्हीं सालों में जुएल का इरादा और भी पक्का होता जाता है।
तो ये शुरुआती साल जूल को गढ़ते हैं और उसके बड़े फैसले की जमीन तैयार करते हैं।
हाँ, मिसिसिपी छोड़ने का फैसला।
बिल्कुल। फिर आता है दूसरा हिस्सा, कैलिफोर्निया का सपना। ये कब की बात है?
ये 1950s के बीच की बात है। जूल एक मैगजीन में कैलिफोर्निया के खास स्कूलों के बारे में पढ़ती है।
अच्छा।
और बस उसके मन में ये धुन सवार हो जाती है कि उन्हें वहां जाना ही होगा, वहां ब्रेंडा के को बेहतर मौके मिलेंगे।
और लेस्टन, वो क्या चाहता है?
लेस्टन हिचकिचाता है, उसे अपनी जड़ें, अपनी जानी पहचानी जिंदगी छोड़ने से डर लगता है।
लेकिन जूल की जिद?
हाँ, जूल की जिद जीत जाती है। वो अपना सब कुछ बेच देते हैं, अपनी पूरी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़कर कैलिफोर्निया के एक अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं।
ये तो बहुत बड़ा कदम है, एक जुआ जैसा।
हाँ, ये कहानी का एक अहम मोड़ है। ये भरोसे, त्याग और अपनी जड़ों से कट जाने का प्रतीक है, एक बच्चे की खातिर।
क्या ये अमेरिकन ड्रीम की तलाश थी?
एक तरह से हाँ, लेकिन सवाल ये भी है कि ये सपना किसका था, जुएल का या पूरे परिवार का?
तो क्या कैलिफोर्निया में सपना पूरा होता है?
यहीं आता है तीसरा हिस्सा, नई दुनिया की कड़वी हकीकतें, 1950s 60s।
अच्छा।
लॉस एंजलस पहुंचकर उन्हें निराशाहत लगती है, सपना वैसा नहीं था जैसी उम्मीद थी।
कैसे, क्या होता है?
पैसों की तंगी, छोटा सा अपार्टमेंट, बड़े शहर की भीड़ में खो जाने का एहसास। लेस्टन को ढंग का काम मिलने में बहुत मुश्किल होती है।
और वो खास स्कूल जिनके लिए वो गए थे?
उनकी अपनी ब्यूरोक्रेटिक दिक्कतें हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं। जुएल का संघर्ष अब भी जारी है, लेकिन अब वो ज्यादा अकेली है।
और बच्चों पर क्या असर होता है?
बड़े हो रहे बच्चों में तनाव बढ़ता है, नाराजगी भी। बिली जीन की शादी होती है और वो घर छोड़ देती है, जैसे परिवार का बिखरना शुरू हो गया हो।
तो अमेरिकन ड्रीम की असलियत सामने आती है?
बिल्कुल, जुएल के सपनों और हकीकत के बीच का फासला साफ दिखने लगता है, परिवार पर दबाव बहुत बढ़ जाता है।
फिर आगे क्या होता है?
चौथा हिस्सा
है छोटी जीत और बढ़ते नुकसान। ये 60s और 70s का दौर है।
इसमें क्या होता है?
इसमें जुएल की मेहनत रंग लाती है, ब्रेंडा के काफी कुछ सीखती है, पढ़ना लिखना सीख लेती है।
अरे वाह।
हाँ, उसकी अपनी शख्सियत उभरती है। ये जुएल के लिए जैसे सत्यापन के पल हैं कि उसका त्याग बेकार नहीं गया।
लेकिन आपने कहा बढ़ते नुकसान भी?
हाँ, क्योंकि इसी दौरान बाकी बच्चे एक एक करके बड़े होते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं। माँ के साथ उनके रिश्ते तनाव भरे ही रहते हैं।
ओह।
तो जुएल के लिए ये खुशी और गम दोनों का दौर है।
बिल्कुल,
एक तरफ बेटी की तरक्की की खुशी, दूसरी तरफ बाकी बच्चों से बढ़ती दूरी का दुख। ये उस कीमत को साफ दिखाता है जो उसने चुकाई।
ये सवाल फिर उठता है, क्या ये कीमत बहुत ज्यादा थी?
ये पाठक को सोचना पड़ता है।
उपन्यास का आखिरी हिस्सा, वो किस बारे में?
आखिरी हिस्सा है स्वीकार्यता और विरासत। ये 80s का दशक है।
ठीक है, जो और लेस्टन अब बूढ़े हो चले हैं, ब्रेंडा के अब एक बालिग महिला है और अब भी उनके साथ रहती है। जिंदगी भर की मेहनत के बाद लेस्टन की सेहत गिरने लगती है। और फिर उसकी मौत हो जाती है।
हो, ये तो जुएल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।
बहुत बड़ा, वो बिल्कुल अकेली रह जाती है और उसे ब्रेंडा के भविष्य की चिंता सताने लगती है कि मेरे बाद इसका क्या होगा।
और यहीं
जुएल जैसे अपने जीवन का पूरा हिसाब किताब करती है, मन ही मन।
कोई नाटकीय पल आता है?
नहीं, नाटकीय नहीं, बल्कि बहुत शांत, स्वीकृति का एक गहरा क्षण। वो अपनी बेटी को देखती है और उसे एहसास होता है।
क्या एहसास होता है?
कि उसका मकसद ब्रेंडा के को दुनिया की नजर में नॉर्मल बनाना कभी था ही नहीं।
तो क्या था मकसद?
मकसद था बस उसे पूरी तरह से प्यार करना, जैसी वो है वैसी ही। और इसमें वो जानती थी वो और लेस्टन कामयाब हुए थे।
ये तो बहुत सुकून देने वाली, हालांकि दुख भरी समझ है।
हाँ, वो समझ जाती है कि ब्रेंडा के की जिंदगी भले ही वो दुनिया के पैमानों पर खरी ना उतरे, पर प्यार और इज्जत से भरी एक पूरी और सार्थक जिंदगी रही है।
ये एक माँ के लंबे मुश्किल सफर का एक मार्मिक अंत है। इस पूरी कहानी में कई अहम विषय हैं, है ना?
हाँ, कई परतें हैं इसमें।
सबसे बड़ा तो शायद यही है, बिना शर्त प्यार, उसका त्याग, उसकी ताकत
और उसकी मुश्किलें भी, उसकी कीमत।
हाँ, और ये सवाल कि एक सार्थक जिंदगी क्या होती है, क्या वो काबिलियत से तय होती है या प्यार और गरिमा से?
बिल्कुल, और भरोसा, उम्मीद, समाज के दबाव के खिलाफ खड़े होने की वो हिम्मत,
जुएल की वो जिद।
हाँ, वो जिद्दी भावना। फिर ये भी कि कैसे खास हालात परिवार के रिश्तों को बदल देते हैं।
भक्ति की कीमत।
जी, और जगह का महत्व, मिसिसिपी बनाम कैलिफोर्निया, यादें और अमेरिकी सपने की एक अलग ही तस्वीर।
उपन्यास की शैली के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, ब्रेट लॉट का लिखने का अंदाज।
हाँ, वो तीसरे व्यक्ति सीमित नजरिए से लिखते हैं, मतलब कहानी ज्यादातर जुएल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है।
इससे क्या होता है?
इससे पाठक जुएल की दुनिया में पूरी तरह डूब जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। हमदर्दी महसूस करता है।
कहानी सीधी चलती है वक्त के साथ?
हाँ, बिल्कुल एक खानदानी दास्तान की तरह, और भाषा बहुत सीधी सरल पर जज्बात से भरी हुई।
वो भावुकता में बहते नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, हकीकत पर टिके रहते हैं, और किरदारों के लिए गहरी हमदर्दी है उनके लेखन में।
कुछ प्रतीक भी हैं क्या कहानी में?
हाँ हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुखर नहीं, जैसे ज्वेल का नाम ही एक कीमती पत्थर, मजबूत।
और लेस्टन के हाथ?
हाँ, लेस्टन के हाथ उसकी मेहनत का प्रतीक है, और ज्वेल के हाथ देखभाल का, सुरक्षा का।
और जगह मिसिसिपी और कैलिफोर्निया?
मिसिसिपी जैसे अतीत है, जड़ें हैं, सीमाएं हैं, और कैलिफोर्निया भविष्य है, उम्मीद है, लेकिन गुमनामी और अकेलापन भी है वहाँ।
ये प्रतीक कहानी को और गहरा बनाते हैं।
बिल्कुल।
इस उपन्यास का पाठक पर असर कैसा होता है, क्या महसूस होता है पढ़कर?
असर तो बहुत गहरा होता है, देर तक रहता है। कहानी दुखद है, इसमें कोई शक नहीं।
हाँ, उदास तो करती है।
करती है, लेकिन आखिर में ये उम्मीद और प्यार की ताकत का संदेश भी देती है। पाठक ज्वेल के लिए बहुत हमदर्दी महसूस करता है, भले ही उसके फैसलों के नतीजों से वो पूरी तरह सहमत ना हो।
ये सिर्फ रुलाती नहीं, सोचने पर भी मजबूर करती है।
हाँ, वैचारिक स्तर पर भी ये झकझोड़ती है। ये विकलांगता, बुद्धिमत्ता, इंसान की कीमत, इन सब पर हमारी सोच को चुनौती देती है।
त्याग के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, कितना त्याग ठीक है।
बिल्कुल, ये कहती है कि सतही तौर पर मत देखो, हर जिंदगी में एक गरिमा है, उसे पहचानो।
और ये उस साधारण से दिखने वाले पर असल में बहुत बड़े काम की याद दिलाती है, बिना शर्त प्यार।
हाँ, उसका वो क्रांतिकारी असर।
तो अंत में ये कहानी हमें बिना शर्त प्यार की अपार शक्ति और उसकी जटिलताओं के बारे में क्या सिखाती है,
और कैसे ये हमें हर जिंदगी के उसके अपने अंदरूनी मोल को पहचानने के लिए प्रेरित करती है, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।